नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने 11 संगठनात्मक जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस शिक्षा सत्र के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। जहांगीरपुरी से 4 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी अगले वर्ष ISF वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगी और दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 3 दिन के त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में जो कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों को 1 महीने के भीतर सील भी किया जा सकता है। एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोचिंग संस्थानों की संख्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन छात्रों की सुरक्षा और संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी छात्रों से अपील की है कि यदि किसी कोचिंग संस्थान में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है तो इसकी जानकारी संदेश, ईमेल या फोन के माध्यम से प्रशासन को दें।
1 महीने का टाइम है। दिल्ली में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, 900 या 1000 नंबर से मतलब नहीं है, मतलब है बच्चों की जान से, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके पास फायर ऑडिट नहीं है, जिनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है, जिनकी बिल्डिंग में सेफ्टी और सिक्योरिटी के सभी मेजर्स नहीं है, उनको सील कर दिया जाएगा यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे।
दिल्ली प्रदेश भाजपा ने आज 11 संगठनात्मक जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा कुछ नए मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की है। पार्टी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और वरिष्ठ नेतृत्व की सहमति से संबंधित जिला अध्यक्षों ने अपने अपने जिलों के पदाधिकारियों की नियुक्ति की घोषणा की है। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि नई सूची में महिला सशक्तिकरण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता के अनुरूप 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित टेक फॉर फ्यूचर कार्यक्रम के समापन समारोह में आज सीएम श्री स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने नवाचार आधारित प्रोजेक्ट और मॉडल प्रस्तुत किए। इन प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य रोजमर्रा की समस्याओं का तकनीक के जरिए समाधान देना था। समारोह में दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच, नए विचार और समस्याओं का समाधान खोजने की क्षमता दिल्ली के युवाओं की प्रतिभा को दिखाती है। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार स्कूलों में रोबोटिक्स लैब और स्मार्ट क्लासरूम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।
हम आपको रोबोटिक लैब्स और स्मार्ट क्लासेस इसलिए दे रहे हैं ताकि आप तकनीक के उपभोक्ता नहीं, तकनीक के निर्माता बने। आपकी जिज्ञासा को कभी मरने मत देना, क्योंकि भविष्य उन्हीं से है जो आज की सीमाओं को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं।
दिल्ली सरकार में मंत्री और बवाना विधानसभा से विधायक रविन्द्र इंद्राज सिंह कल चांदपुर खुर्द से चांदपुर कला लिंक रोड और माजरा रोड में उच्च वोल्टेज तारों के स्थानांतरण कार्य का शिलान्यास करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बवाना विधानसभा में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रोहतक के कुलपति के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट पर दी गई जानकारी में श्री संधू ने बताया कि बैठक में नई तकनीकों के बढ़ते असर और उनका लोगों की समस्याओं के समाधान में बेहतर इस्तेमाल करने पर चर्चा हुई। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज रोहतक के भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रबंधन के स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 17वें बैच के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्री संधू ने कहा कि आज के समय में प्रबंधन का मतलब सिर्फ काम को बेहतर तरीके से करना या संसाधनों का सही उपयोग करना नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पंजीकरण प्रक्रिया का पहला चरण शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट।
विश्वविद्यालय ने बताया कि CUET UG 2026 की परीक्षा देने वाले छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं, वे सामान्य सीट आवंटन प्रणाली यानी CSAS 2026 पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय के 67 कॉलेजों में 73 स्नातक पाठ्यक्रमों और 100 से अधिक BA कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय ने कहा है कि पंजीकरण केवल CUET UG 2026 की आवेदन संख्या के माध्यम से ही किया जा सकेगा। सौम्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को जहांगीरपुरी से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनके पास से प्रतिबंधित नशीले दवाओं की 1300 गोलियां बरामद हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 22 लाख रुपए से अधिक नकद, करीब 35 लाख रुपए के सोने के गहने, 6,20,000 रुपए के चांदी के गहने और एक स्कूटी भी जब्त की है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि राजधानी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी और ऐसे संगठित गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने गाजियाबाद में जमीन और अचल संपत्ति धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में 4 स्थानों पर छानबीन की है। यह अभियान सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों के ठिकानों पर गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत चलाया गया। छापों के दौरान एजेंसी ने धन के लेन देन, संपत्तियों, कंपनियों के वित्तीय विवरणों और कई अन्य संबंधित दस्तावेजों को जब्त किया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद तथा केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य और औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज उत्तर प्रदेश के जेवर में अंबर और एसेंट के सर्किट विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि आज दुनिया विश्वसनीय, लोकतांत्रिक और सक्षम विनिर्माण भागीदारी की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज उस भरोसे का केंद्र बनकर उभरा है। श्री वैष्णव ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शी नीतियां, कुशल युवा कार्यबल और तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे के कारण भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का स्वाभाविक केंद्र बन रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी विभागों के मुख्यालयों और जिला स्तर के कार्यालयों में ई ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। मानव संसाधन विकास की समीक्षा करते हुए आज मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक माह अपने कार्यों का विवरण अनिवार्य रूप से HRMS पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह सभी अधिकारी और कर्मचारी समय पर अपना विवरण पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में यह क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। एमएसएमई दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े सभी उद्यमियों को शुभकामनाएं दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज रोहिणी में बाल संस्कार शिविर 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि शिविर ने बच्चों को केवल सुखद स्मृतियां ही नहीं दी, बल्कि उन्हें ऐसे संस्कार, अनुशासन और संस्कृति मूल्यों से भी समृद्ध किया है जो जीवन भर उनका मार्गदर्शन करेंगे। श्री गुप्ता ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष 10,000 पौधे लगाने का आह्वान किया। दिल्ली जल बोर्ड ने टैंकर आधारित जलापूर्ति में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 82,117 से अधिक अतिरिक्त टैंकर जलापूर्ति दर्ज की है। जल बोर्ड ने बताया कि पिछले वर्ष मई में जहां 106,501 टैंकर जलापूर्ति दर्ज की गई थी, वहीं इस वर्ष मई में यह संख्या बढ़कर 188,618 टैंकर जलापूर्ति तक पहुंच गई है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 105वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवन और विरासत से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा में हर वर्ष लगभग 178,000 से 187,000 मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है। इसमें करीब 23,000 मीट्रिक टन जीआई।
राष्ट्रीय राजधानी अगले वर्ष आईएसएफ वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इसके लिए दिल्ली सरकार स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बीच कल समझौता हुआ। इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद मौजूद रहे। श्री सूद ने कहा कि इन दोनों प्रतियोगिताओं में 50 से अधिक देशों के 1,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।
फेडरेशन के अंतर्गत जहां बैडमिंटन और रेसलिंग के इंटरनेशनल खेल होंगे, जिसमें
मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने कहा कि त्रिपुरा में हर वर्ष लगभग 178,000 से 187,000 मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है। इसमें करीब 23,000 मीट्रिक टन जीआई टैग वाला क्वीन अनानास भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
राष्ट्रीय राजधानी के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आज 3 दिन के त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले कोचिंग संस्थानों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली प्रदेश भाजपा ने 11 संगठनात्मक जिलों के जिला पदाधिकारियों तथा मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा सत्र के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। जहांगीरपुरी से 4 आरोपी गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी अगले वर्ष ISF वर्ल्ड स्कूल रेसलिंग और बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।